ओम नमो भगवते वासुदेवाया। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 13 श्लोक संख्या 23। अध्याय का शीर्षक है राजा रहुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नम आवतुभ्यः। ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गाः चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं उन महापुरुषों का नमस्कार करता हूं जो इस धरातल पर शिशु तरुण बालक अवधूत या परम ब्राह्मण के रूप में विचरण करते हैं। यदि वे विभिन्न देशों में कहीं छिपे हुए हैं तो भी मैं सबको नमस्कार करता हूं। उनके अनुग्रह से उनका अपमान करने वाले वंशों का कल्याण हो। तात्पर्य तात्पर्य राजा रहुगण को अत्यंत पश्चाताप हुआ क्योंकि उन्होंने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए बाध्य किया था। अतः उन्होंने समस्त प्रकार के ब्राह्मणों तथा स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वंदना करनी प्रारंभ की, चाहे वे शिशु रूप में हो या किसी भी वेश में छिपे हो। चार कुमार 5 वर्षीय बालकों के रूप में सर्वत्र घूमते थे। इसी प्रकार अनेक ब्राह्मण बच्चे तरुण या अवधूत रूप में विश्व का परिभ्रमण करते रहते हैं। सामान्यतया राजा लोग अहंकार वर्ष इन महापुरुषों का तिरस्कार करते रहते हैं। अतः राजा रघुवर ने उनको ही सादर नमस्कार किया है जिससे अहंकारी राजवंश नरक को न प्राप्त हो। यदि कोई महापुरुष का अपमान करता है तो श्री भगवान उसे क्षमा नहीं करते। दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश का अपमान किया था। जब वे भगवान विष्णु के पास क्षमा के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्षमा नहीं प्रदान की। उन्हें महाराज अम्बरीश के चरणों पर गिरना पड़ा। यद्यपि वे क्षत्रिय ग्रस्त थे, मनुष्य को चाहिए कि वह वैष्णव तथा ब्राह्मण का अपमान न करे। ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापिताम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जड़ भरत महाराज रघुण से वार्तालाप कर रहे हैं और यहाँ पर राजा रघुगण बता रहे हैं क्योंकि वो पश्चाताप कर रहे हैं। उन्हें लगा है कि उन्होंने बहुत ही बड़ा अपराध किया है जड़ भरत के चरणों में और इसलिए पश्चाताप करते हुए राजा रघुगण अब स्तुति कर रहे हैं। यानी जिस वाणी से उन्होंने जड़ भरत की वर्षना की थी उसी वाणी से वो वैष्णवों का और ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में ये बता रहे हैं कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम लोग वास्तव में जहर पी रहे हैं और जहर को कम करने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ती है। तो अमृत क्या है? जब हम वैष्णवों का गुणगान करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं तो ये अमृत है। इस अमृत का पान करने से हमारी चेतना में जो जहर भरा है वो कम होने लगता है। तो इसी तरह से यहां पर हम देख रहे हैं महाराज राहुगण अपनी उसी वाणी से, जिस वाणी से उन्होंने अपमानित किया था जड़ भरत को, अभी वो वैष्णवों का और ब्राह्मणों का गुणगान कर रहे हैं। तो शास्त्र में सब कुछ दिया है, शास्त्रों में वो सारे जरिए बताए गए हैं, रास्ते बताए गए हैं, जिसके माध्यम से हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें महाजनों की कथा है, उच्च कोटि के वैष्णव आचार्यों की कथा है, और ये सभी वैष्णव अपने अपने जीवन के द्वारा हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। ये सब शिक्षाप्रद कथाएं हैं, भगवान की योजना है, भगवान की व्यवस्था है, जिसके द्वारा हम जैसे जो साधक हैं वो सीख सकें कि वैश्य समाज में आने पर या किसी भक्त से मिलने से हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से अपराधों से बचना चाहिए, ताकि जीवन के अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो 5 वर्षीय बालक कौन है, 4 कुमार हैं। तो 4 कुमार की यहाँ स्थिति कर रहे हैं। प्रभुपाद महाराज अम्बरीश का उदाहरण दे रहे हैं, जिनका अपराध किया दुर्वासा मुनि ने। महाराज अम्बरीश, उन्होंने 1 वर्ष की छुट्टी लेकर ब्रज में गए थे, अपने मंत्रियों को और अपने परिवार के सदस्यों को राज्य का कार्यभार सौंप कर अम्बरीश महाराज ब्रज में गए, वृंदावन गए, छुट्टी में गए स्पिरिचुअल पिकनिक के लिए, पिकनिक नहीं साधना के लिए, साधन भजन करने के लिए। तो अम्बरीश महाराज विश्व के सम्राट थे, लेकिन भगवान के अनन्य भक्त थे और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। एकादशी का व्रत उन्होंने रखा हुआ था और द्वादशी के दिन दुर्वासा मुनि उनके पास आए ताकि वो प्रसाद ग्रहण कर सके, लेकिन अभी पारण का समय हुआ नहीं था। तो अम्बरीश महाराज दुविधा में पड़ के करें क्या, तो क्योंकि अम्बरीश महाराज ने निर्जल व्रत रखा हुआ था, तो उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों से सुझाव लिया कि क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने सुझाव दिया कि आप जल पी लें, जल पीने से आपका निर्जल व्रत भी टूट जाएगा और साथ में व्रत बना भी रहेगा। तो इस सुझाव को सुनकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने जल ग्रहण किया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधिका रमन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर लिया दुर्वासा मुनि के आने से पहले। दुर्वासा मुनि इस बात पर क्रोधित हो गए। अब ऋषि मुनि इतने क्यों क्रोधित होते हैं ये तो वही जाने, लेकिन जो भी है इन लीलाओं के पीछे निश्चित रूप से भगवान का भी हाथ है। भगवान लीलाओं के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। दुर्वासा मुनि जब क्रोधित हुए, उन्होंने जटाओं से राक्षस प्रकट किया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। उनका क्रोध देखिए कितना बढ़ गया, इतने क्रोधित हो जाते हैं दुर्वासा मुनि। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सुदर्शन चक्र जो है पीछे लग गया और दुर्वासा मुनि भागे जा रहे हैं। सुदर्शन चक्र पीछे, उनके पीछे पीछे जा रहा है सुदर्शन चक्र। और दुर्वासा मुनि पहुंच गए, कहां पहुंच गए, ब्रह्मा जी के लोग पहुंचे, उसके शिव लोग पहुंचे और उसके बाद वैकुंठ तक पहुंच गए। वैष्णव अपराध करके कौन वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है? तो इसलिए हमने कहा ये शिक्षा प्रद कथाएं, इन कथाओं के माध्यम से हम सबको शिक्षा मिलती है। वैकुंठ में भगवान के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी थी, दुर्वासा मुनि वहां पर पहुंचे और दुर्वासा मुनि ने कहा कि आप मुझे बचाइए, हे भगवान, ये सुदर्शन आपका जो है सुदर्शन चक्र ये मेरे पीछे लगा हुआ है और इसकी गर्मी, इसका जो ताप है, इसको नहीं मैं सह पा रहा हूं। आपके अलावा हमारी और कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान बताते हैं दुर्वासा मुनि को कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं स्वयं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी परतंत्र हूं। भगवान भी अपने भक्तों का आश्रय लेते हैं, जिस तरह से भक्त जो है अन्य भक्तों का या भगवान का आश्रय लेते हैं, इसी तरह से भगवान भी भक्तों का आश्रय लेते हैं। और भगवान जब भक्तों का आश्रय लेते हैं तो उनके अधीन होना चाहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं दुर्वासा मुनि से कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। महाराज अम्बरीश ही आपकी सहायता करेंगे, आप जाइए उनसे क्षमा मांगे। तो भगवान के कहने पर दुर्वासा मुनि वैकुंठ से वापस आए। एक साल बीत चुका था और एक साल के लिए अम्बरीश महाराज वहीं पे खड़े थे, वहीं पे थे, वो हिले नहीं। वो अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि का इंतजार कर रहे थे। और इतना होने पर भी अम्बरीश महाराज की महानता देखिए कि उनको कोई क्रोध नहीं आया, उल्टा वो अपने आप को कोसने लगे और स्वयं पश्चाताप करने लगे कि मैंने दुर्वासा मुनि की ठीक से सेवा नहीं की। दुर्वासा मुनि हैरान हो गए कि मैं हूं मुनि, मैं हूं ऋषि, ये साम्राज्य चलाने वाला एक राजा है, विश्व का सम्राट है, लेकिन इसकी भक्ति के सामने तो मेरी योग शक्ति तो फीकी पड़ गई। तो अम्बरीश महाराज से उन्होंने क्षमा याचना की, लेकिन अम्बरीश महाराज ने बदले में दुर्वासा मुनि की सेवा की। तो ये जो वैश्य अपराध है ये बड़ा भयानक होता है, और इस प्रसंग में हम लोग ये शिक्षा लेते हैं, किसी की वेशभूषा से कोई बालक के शरीर में है, कोई युवक अवस्था युवावस्था में है, कोई वृद्धावस्था में है, किसी के कपड़े ठीक नहीं है, कोई देखने में बड़ा कुरूप लगता है। जैसे एक भक्त था वृंदावन में, वो जब वृंदावन में वृंदावन की गलियों से गुजर रहा था तो श्रील रूप गोस्वामी उस समय लीला स्मरण कर रहे थे, उनको लीला स्फूर्ति हो रही थी कि श्रीमती राधा रानी फूल चुन रही हैं और वृक्ष की टहनी से फूल निकालने का प्रयास कर रही हैं। कृष्ण ऊपर खड़े हैं, कृष्ण के वृक्ष के ऊपर छुप कर उन्होंने क्या किया, टहनी को नीचे कर दिया, और राधा रानी ने टहनी को पकड़ा और टहनी पकड़कर राधा रानी जो है फूल निकालने का प्रयास कर रहे थे, और कृष्ण फिर क्या करते हैं उस टहनी को छोड़ देते हैं, तो राधा रानी टहनी के साथ जो है झूलने लगती हैं। तो ये लीला स्मरण करते हुए ये स्फूर्ति जब हुई श्री रूप गोस्वामी को, तो रूप गोस्वामी इस लीला स्फूर्ति से मुस्कुराने लगे, उनको हंसी आ गई। ठीक उसी समय जब ये कुरूप वैष्णव जो है उस रास्ते से मार्ग से गुजर रहे थे उसी समय वो हंस दिए, तो उस वैष्णव को लगा कि मुझे देखकर हंस रहे, बहुत बुरा लगा उनको, बहुत बुरा लगा। श्रील रूप गोस्वामी ने कोई अपराध नहीं किया, श्रील रूप गोस्वामी तो लीला स्मरण कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि इस वैष्णव को बुरा लगा तो श्रील रूप गोस्वामी की जो लीला स्फूर्ति है वो बंद हो गई। श्रील रूप गोस्वामी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा कि ये लीला स्मरण क्यों नहीं हो रहा है मुझे। वो अपने बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी के पास गए, उनसे पूछा कि क्या कारण है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लीला स्फूर्ति नहीं होती है, लगता है निश्चित रूप से मुझसे कोई अपराध हुआ है, क्या हुआ है समझ में नहीं आया मुझे। सनातन गोस्वामी ने कहा, श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं निश्चित रूप से कुछ अपराध हुआ है, हो सकता है किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया हो। हमें जितने भी तमाम वैष्णव हैं वृंदावन में उन सबको प्रीति भोज प्रसाद के लिए आमंत्रित करना चाहिए, और इस तरह से उस वैष्णव को हम प्रसन्न कर सकेंगे। तो सभी वैष्णव आए वृंदावन में, जितने भी भक्त थे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बुलाए प्रसाद के लिए, तो कौन मना करेगा। तो सभी भक्त लोग आए प्रसाद ग्रहण करने के लिए, लेकिन एक वैष्णव नहीं आया, वही वैष्णव जिसका शरीर जो है कुरूप था। तो श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में भी लिखा है, दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुषश्च दोषे न प्राकृतत्वम ये भक्त जनस्य पश्ये। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैश्य के शरीर को देखकर उसे प्राकृत नहीं मानना चाहिए। वैश्य का शरीर प्राकृत नहीं होता है, वैश्य का शरीर अप्राकृत होता है। अगर प्राकृत दृष्टि रखेंगे, प्राकृत दृष्टि रखेंगे तो अपराध हो जाए। उदाहरण देते हैं श्रील रूप गोस्वामी गंगा जी का कि गंगा जी बरसात के मौसम में उसे फेन आ जाता है, झाग आ जाता है और शहर का कूड़ा करकट भी उसमें जाता है, लेकिन फिर भी गंगा जी जो है वो पवित्र रहती हैं, अपवित्र नहीं होती हैं, फिर भी गंगा जी में स्नान किया जाता है। इसी तरह से वैष्णव जो है बाहरी रूप से हो सकता है वो देखने में कुरूप हो या वृद्धावस्था में पहुंच गया हो या चल ना पा रहा हो, तो ऐसा देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वैष्णव कर्मबंधन में फंसा है, अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। ऐसा सोचने पर अपराध लग जाता है। तो इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी को पता चला, सनातन गोस्वामी को पता चला कि वो वैष्णव जो है नहीं आया, वो एक ही वैष्णव है जो नहीं आया। हाँ, जिसका शरीर क्या है, कुरूप है, टेढ़ा है, उसका शरीर अलग अलग भागों से टेढ़ा है। तो बाद में फिर उन्होंने उस वैष्णव को आमंत्रित किया, व्यक्तिगत रूप में गए, उनका स्वागत किया, उनकी सेवा की, उनका गुणगान किया। तो श्रील रूप गोस्वामी गोस्वामियों में प्रमुख है, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए इस प्रकार का प्रसंग दिखा रहे हैं। अष्टावक्र मुनि भी जो है आठ अंग से टेढ़े थे, अष्टवक्र उनके आठ अंग जो है टेढ़े मेढ़े थे। और जनक महाराज की सभा में गए तो वहां सभा बुलाए गए थे, बड़े बड़े वहां विद्वान एकत्रित हुए थे, ऋषि मुनि आए थे और बड़ी बड़ी बातें, शास्त्र की बातें वहां हो रही थी। जैसे अष्टवक्र मुनि वहां पे आए तो उनको देखकर राजा लोग हंस दिए, सभा में जो बैठे हुए राजा थे वो सब हंस दिए उनके इस शरीर को देखकर। तो अष्टवक्र मुनि ने क्या किया, महल में जो खंभा था उस खंभे को पकड़कर वो खड़े हो गए, वो खंभे को पकड़कर खड़े हो गए। बोलते सब लोग फिर हंसने लगे कि ये मुनिवर ये क्या कर रहे हैं आप, एक खंभे को पकड़ के क्यों खड़े हैं। बोलते मैं तो खंभे को पकड़ के खड़ा हूं, लेकिन आप लोग तो खंभे, आपको लोगों को तो खंभे ने पकड़ा हुआ है। मतलब वो समझे नहीं अर्थ क्या है इसका, इसका क्या अर्थ, इसका अर्थ यह है कि आप सब जो है देहात्मक बुद्धि में हैं, आप बड़ी बड़ी शास्त्र की बातें कर रहे हैं लेकिन अभी तक आप देहात्मक बुद्धि से ऊपर नहीं उठे हैं। तो इस तरह से जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वैष्णव हैं, वो शिक्षा देते हैं। तो ये शिक्षाप्रद कथाएं हैं। इसी तरह से चार कुमार हैं, पांच साल की अवस्था में हैं, जय विजय उनको नहीं पहचान पाए, ये भी भगवान की इच्छा थी। तो जय विजय नहीं पहचान पाए चार कुमारों को, जो वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते थे, सातवें द्वार तक पहुंच गए थे, सातवें द्वार पर जय विजय ने रोक लिया उनको, अब वैकुंठ में नहीं जाने चाहिए, प्रवेश नहीं करने दिया। ये समझ गए कि ये बालक है, वस्त्र भी नहीं पहने हैं, कहां घुस रहे हैं। बोलते हैं वैकुंठ में ये द्वंद कहां से आ गया, और ऐसे लोग जो वैकुंठ में अगर द्वंद से भरे हैं कोई, अगर वो वैकुंठ में कैसे रह सकते हैं, ऐसे लोगों को तो मृत्यु लोक में रहना चाहिए। जिनके चेतना में द्वंद भरा हुआ है उनके लिए मृत्यु लोक बनाया गया। वैकुंठ में ऐसे बद्रजीव नहीं रह सकते हैं। तो चार कुमार जो है वो क्रोधित जरूर हुए लेकिन भगवान ने फिर रक्षा की। कहने का मतलब यह है कि चार कुमारों को देखकर जय विजय पहचान नहीं पाए। गदाधर पंडित को एक बार मुकुंद ले गए पुंडरीक विद्यानिधि के घर पे। पुंडरीक विद्यानिधि वहां पर ऐशो आराम में थे और रेशम के गद्दे में लेटे हुए थे, कई सेवक उनकी सेवा में लगे हुए थे, पीक दान पास में रखा हुआ था, मुंह में पान था उनके, आमलकी तेल से उन्होंने केश को सुसज्जित किया हुआ था, कोई पंखा कर रहा था, कोई चामार दिखा रहा था, बड़े आराम से लेटे हुए थे। क्योंकि मुकुंद ने कहा था गदाधर पंडित को, मैं आज एक बहुत उच्च कोटि के वैष्णव से आपको मिलाता हूं, चलिए। गदाधर पंडित बचपन से विरक्त थे, वैराग का जीवन बिता रहे थे, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था और उन्होंने अब तक यही समझा था कि वैष्णव तो हमेशा विरक्त होता है, संसार से विरक्त होता है, संसार की भोग सामग्री से विरक्त रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए कितने उच्च कोटि के वैष्णव हैं, ये है पुंडरिक विद्यानिधि। तो गदाधर पंडित मन ही मन में सोचने लगे, उन्होंने कहा ये कैसे वैष्णव है ना, इतना ऐश्वर्य है इनके पास, रेशम का गद्दा है, आंवला की तेल लगाया हुआ है ना, कपड़ों में परफ्यूम लगाया हुआ है, और ये क्या सेवक भी लगे हुए हैं, ये तो सबसे सेवा ले रहे हैं, कोई पंखा कर रहा है, कोई चावल कर रहा है, पीक दान रखा हुआ है, इतना ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य। तो गदाधर पंडित नहीं समझ पाए, तो मुकुंद ने जो है फिर श्रीमद् भागवतम से श्लोक उदित किया। वो श्लोक क्या है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम। तो पूतना के वध के बारे में बताया उन्होंने कि कृष्ण ने पूतना का वध किया और वध करने के बावजूद भी उनको गोलोक वृंदावन में माता का स्थान दिया। तो ये लीला सुनकर, इस श्लोक को सुनकर पुंडरिक विद्यानिधि भावावेश में आ गए और उसके बाद फिर उनको कोई नियंत्रित नहीं कर पाया, सेवकों ने पकड़ा, सबने पकड़ा उनको, वो इतने भाव में आ गए, रोमांचित हो गए, कंपन होने लगा, अश्रु उनकी आंखों से बहने लगा, जमीन में लौटने लगे और उसके बाद मूर्छित हो गए। लगभग 9 घंटे लगातार मूर्छित रहे। ऐसी अवस्था को देखकर गदाधर पंडित हैरान हो कि कितना बड़ा अपराध हुआ है मुझसे, मैं तो पहचान नहीं पाया। वैष्णव क्रिया मुद्रा विघे न बुझाए, कि वैष्णव की मुद्रा और क्रिया उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। विज्ञ यानी कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णव को नहीं पहचान सकता है। वैष्णव बाहर से सरल होंगे, देखने में ऐसा लगेगा कि ये भी जप करते हैं, मैं भी जप करता हूँ, ये भी 16 माला करते हैं, मैं भी 16 माला करता हूँ, ये भी दंडवत करते हैं, मैं भी दंडवत करता हूँ, ये भी मंगल आरती में आते हैं, मैं भी मंगल आरती में आता हूं, तो अंतर क्या है। तो श्री रूप गोस्वामी ने क्योंकि बताया भक्ति रसामृत सिंधु में कि अगर कृष्ण प्रेम भी अगर जाग गया है, कोई स्वाभाविक रूप से भी अगर कृष्ण की सेवा कर रहा है लेकिन बाहरी रूप से उसको वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए आचार्य लोग भी जो है बाहरी रूप से क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि वैदिक भक्ति में लगे हुए हैं लेकिन भीतर से उनका चित्त, उनकी चेतना भगवान के चरणों में लगे होते हैं, भगवत प्रेम से ओतप्रोत होते हैं। महाराज चित्रकेतु ने देखा शिव जी को, उन्होंने अपने गोद में पार्वती को बिठाया हुआ था और भागवत कथा कर रहे थे, बड़ा ही अद्भुत दृश्य था ये, और हजारों लाखों की तादाद में ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित थे, वो सब बड़े ही आराम से बैठकर भागवत कथा सुन रहे थे। साक्षात माया देवी को उन्होंने अपने गोद में बिठाया हुआ, क्योंकि शिव जी क्या मायापति है। चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु उस समय अपने वायुयान में जा रहे थे, महाराज चित्रकेतु ये दृश्य देखकर मुस्कुरा दिए। महाराज चित्रकेतु के हृदय में भगवत प्रेम था, उनसे कोई अपराध नहीं हुआ लेकिन पार्वती को ऐसा लगा, उनको ऐसा लगा कि मुझे मेरे पति को देखकर ये हंस रहा है, मूर्ख, यही समझ पा रहा है इनको, ये क्या समझे महादेव को, इसकी ये जरूरत, जाओ तुम राक्षसोनी में जाओ, है ना। तो इस तरह शाप दे दिया पार्वती। तो पार्वती ने जब शाप दे दिया तो महाराज चित्र के तो फिर भी मुस्कुरा रहे थे, ये बड़ा बेशरम है, मैं इसको शाप दे रही हूं, इसको राक्षसोनी में भेज दिया है, फिर भी जो है इसको जो है शर्म नहीं। तूने कहा कि हे महादेव, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है कारण है, मैंने शाप दिया है लेकिन इसको तो कोई संकोच नहीं हो रहा है, बिल्कुल भय नहीं है इसको। नारायण अपरा सर्वे न कुतश्चन अभ्यभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु तुल्यार्थ अभिदर्शन। शिव जी ने कहा कि ये तो नारायण परायण है, ये नारायण का भक्त है, इनको आप स्वर्ग भेजिए या नरक भेजिए, किसी भी अवस्था में रखिए, ये तो हमेशा एक समान रहेंगे, हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे, क्योंकि उनका मन, इनका चित्त, इनकी समस्त इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में लग चुकी है। इनके हृदय में भगवत प्रेम जाग चुका है, इनसे कोई अपराध नहीं हुआ। तुम्हारा चित्रकेतु से कोई अपराध नहीं हुआ, जय विजय से कोई अपराध नहीं हुआ, क्योंकि इनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम था। तो इसलिए बाहरी दृष्टिकोण से हम किसी वैष्णव को नहीं समझ सकते। शिवजी को देखकर बड़ा अद्भुत दृश्य, शिवजी की गोद में पार्वती बैठे हैं और भागवत कथा कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि सामान्य व्यक्ति और सामान्य भक्त भी जो हैं ऐसे दृश्य को देखकर जो हैं वो मजाक उड़ाएं कि ये किस तरह का वैष्णव। शिल गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, यहां तक बंसी दास बाबा जी महाराज क्या करते थे, अपने कुटिया के सामने वो फिश बोन्स रखते थे, फिश बोन्स मछली की हड्डियां रखते थे, और कई बार तो अपने विग्रह को कपड़े नहीं पहनाते थे, कई बार अपने अर्चे विग्रह के सामने चाय रख देते थे, कई बार वो अपने अर्चे विग्रह ने गौर निताय को डांटते थे, उनसे लड़ते झगड़ते थे, तो सामान्य लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए सब लोग उनसे दूर रहते थे। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे उनसे शिक्षा लेने के लिए। उनका कहना था कि ये परमहंस है, वैष्णव है, इनसे जाके आप शिक्षा लीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। श्री गौर कृष्णनाथ बाबा जी महाराज कोलद्वीप में, जो कि कुलिया ग्राम के नाम से प्रचलित था, वहां पे एक पब्लिक लैट्रिन में वो जप किया करते थे। एक गृहस्थ भक्त आए थे उनके पास, बड़ी उनकी प्रबल इच्छा थी कि बाबा जी महाराज हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें मौका दीजिए आप सेवा का। तो उन्होंने कहा आप सेवा करना चाहते हैं तो मुझे आप अनुमति दें कि मैं इस पब्लिक लैट्रिन में बैठ के आराम से जप कर सकूं। तो उनसे पूछा गया कि आप पब्लिक लैट्रिन में बैठ के क्यों जप करना चाहते हैं, आपके लिए हम कुटिया बना देते हैं, आपके लिए कमरा लेके दे देते हैं, योग्य स्थान है भजन करने का। तो बाबा जी महाराज ने कहा ये जो स्थान है, मलमूत्र त्यागने का जो स्थान है, ये स्थान बहुत अधिक पवित्र है, ये स्थान में भजन करना मेरे लिए और अच्छा होगा, बल्कि ये कि मैं किसी विषय व्यक्ति का संग करूं। विषय व्यक्ति का संग करना जितना खतरनाक है, उससे तो अच्छा यह है कि मैं यहां पब्लिक लैट्रिन में बैठ कर जप करूं। यह है परीक्षा, अगर किसी की भजन में रुचि है तो ऐसे स्थान में भी उसको हरिनाम लेना चाहिए। तो बाबा जी महाराज वहां पर रहकर भजन करते थे। तो एक और बाबा जी आए तथाकथित, वो भी वहां भजन करने लगे पास के ही पब्लिक लैट्रिन में, और रात को लेट आया करते थे। बाबा जी महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं तुम कहां से आ रहे हो, अपना समय बर्बाद मत करो, जाओ भक्तों का संग करो, ये ढोंग मत करो। तो बाबा जी महाराज की आंखें भी चले गई थी, वो देख नहीं पाते थे, लेकिन बिना देखे वो पहचान लेते थे कि सामने वाला व्यक्ति क्या है और किस उद्देश्य से उनके पास आया। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है, इस श्लोक के अनुसार और तात्पर्य में जो दिया है उसके अनुसार ये निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग वैष्णवों को इतनी आसानी से नहीं पहचान सकते, लेकिन हमें मानना होगा कि हम अभी तक वैष्णव नहीं बने, हम सब वैष्णव बनने का प्रयास करें। कुछ उसमें से हो सकते हैं आप में से जो वैष्णव बन चुके हैं, लेकिन अधिकांश हम सब वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर भक्तिनोद कहते हैं जो प्राकृत भक्त होते हैं उनको वैष्णव प्राय बताया गया, जैव धर्म में भक्तिनोद ठाकुर ने बताया है, यानी जो वैष्णव जैसे दिखते हैं, तिलक है, कंठी माला है, सब कुछ है, लेकिन अभी वैष्णव बने नहीं है, वैष्णव प्राय, वैष्णव जैसे दिखना। तो हम लोग वैष्णव जैसे दिखते हैं लेकिन अभी वैष्णव बने नहीं, लेकिन जो वैष्णव है वो कभी दिखाते नहीं है कि वो वैष्णव है। ये देखिए बड़ी आश्चर्य की बात, जो वैष्णव नहीं है वो दिखाते हैं कि वो वैष्णव है, और जो वैष्णव नहीं वैष्णव है वो नहीं दिखाते हैं कि वो वैष्णव है। और इसलिए साधारण जो भक्त हैं उनको मानते नहीं कि वो वैष्णव है, उनको साधारण भक्त मानते हैं, वो सोचते हैं कि ये भी हमारे जैसे ही है। आत्मन मन्यते जगत, है ना, क्योंकि मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, इसलिए इनके हृदय में भी प्रेम नहीं होना चाहिए। आत्मन मन्यते जगत, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो इस प्रकार से मनोकल्पना करते हैं। तो कुछ हम पढ़ेंगे अपराध के बारे में, जो कि श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर ने अपने ग्रंथ माधुर्य कादंबरी में दिया है, और बता कि ये जो अपराध उथ अनर्थ है, ये कहां तक जाके शेष होते हैं। अपराध उथ अनर्थ, कई प्रकार के अनर्थ होते हैं, पिछले जन्म के अनर्थ होते हैं, यानी कि पाप कर्मों के कारण, जिसको दुष्कृत उत अनर्थ कहते हैं, पुण्य कर्म के कारण अनर्थ पैदा होते हैं, जिसको कहते हैं सुकृत उत अनर्थ, और एक अनर्थ होता है जो अपराध के कारण उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अपराध उत अनर्थ। तो अपराध उत अनर्थ का मतलब यह है कि अपराध उत अनर्थ ये समाप्त होता है भाव की अवस्था में, इसको कहते हैं प्रायिकी होता है। प्रायिकी का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट ये इरेडिकेट हो जाता है, इसको कह सकते हैं 95% भाव की अवस्था में, 95% जो है भाव के कारण जो उत्पन्न हुए अनर्थ हैं वो समाप्त होते हैं, और पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है प्रेम की अवस्था में। और भगवत प्राप्ति में जब नित्य लीला में प्रवेश करते हैं तो आत्यंतिक ही हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है, एब्सोल्यूट सेसेशन हो जाता है इसका। तो कहने का अर्थ ये है जितने भी अनर्थ हैं उसमें सबसे भयानक है ये अपराध के द्वारा उत्पन्न हुआ अनर्थ। और अपराध ही कई प्रकार के हैं, जैसे नाम अपराध है, सेवा अपराध है, धाम अपराध है, और फिर है वैष्णव अपराध। और इन अपराधों में सबसे जो भयानक है वो है वैष्णव अपराध। चक्रदीपाद क्या कह रहे हैं, अपराध से जो अनर्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें अपराध उत अनर्थ कहते हैं। ये अपराध उत अनर्थ ही प्राय भजन के प्रबल विघ्नकारी होते हैं। पाप और अपराध साधारणतः एक ही अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु भक्ति शास्त्रों में पाप और अपराध में बहुत भेद माना गया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर ने कहा है कि जो अपराध है वो मिलियन टाइम ज्यादा खतरनाक है पाप से। भजन के आभास मात्र से ही जलती हुई आग में रुई की ढेर की भांति पाप राशि ध्वस्त हो जाती है, यानी आभास और नामाभास इसको कहते हैं। भजन का आभास होता है तो क्या होता है, कई जन्मों के पाप जो है जलकर राख हो जाते हैं। नामाभास की स्थिति में बताते हैं कि प्रारब्ध भी कट जाते हैं, कूट बीच अपरारब्ध प्रारब्ध, ये पाप की चार अवस्थाएं। और रुचि की अवस्था में या नामाभास की स्थिति में, जिसको श्रद्धा नामाभास कहते हैं, ऐसी अवस्था में प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। किंतु अपराध सहज ही ध्वंस नहीं होता, अपना अपराध स्वीकार कर तीव्र अनुताप से ही अपराध का प्रायश्चित संभव है। पापी व्यक्ति अनायास ही भजन के बल से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, किंतु अपराधी व्यक्ति के लिए वह संभव पर नहीं होता है। यानी कि भक्ति आप प्रारंभ कर सकते हैं, अगर आप पापी भी हैं तो आप भजन शुरू कर सकते हैं, भक्ति के मार्ग में आ सकते हैं। पाप कार्य को त्यागना नहीं होगा आपको भक्ति मार्ग में आने के लिए, लेकिन जब भक्ति में आ जाते हैं और फिर भक्ति मार्ग में और गंभीर होना चाहते हैं तो ये स्वाभाविक है कि हमें हर प्रकार के पापों से छुटकारा भी मिलता है। पापी व्यक्ति अनायास ही भजन के बल से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, किंतु अपराधी व्यक्ति के लिए वह संभव पर नहीं होता। किंतु प्राणी की हत्या, चोरी, पर नारी गमन, व्यर्थ बकवाद, कठोर भाषण, दुष्टाचरण, दुराचार, दूसरे के धन आदि को हड़पना, दूसरे को दुख देना, दूसरे की बुराई करना, शराब पीना, मांस अंडा आदि अभक्ष पदार्थों का सेवन करना, ये सब स्मृति शास्त्र में पाप कहे गए हैं। ये सब पाप कहे गए, जो चार नियम बताए गए हैं श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, उन नियमों का भंग करते हैं वो सब क्या है, प्रभुपाद कहते हैं ये सभी पापों का सार है। ये जो चार जो पाप है ये सभी पापों का सार है। क्या ये चार जो नियम है अगर इसका भंग करते हैं तो ये सब स्मृति शास्त्र पाप कहे गए। इनको भी फिर 9 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, संकरीगण, अपात्रीकरण, जाति भ्रंश कर, मलाव और प्रकरीकरण। और आगे चैतन्य चरितामृत से विश्वनाथ ठाकुर बता रहे हैं, एक शुद्ध कृष्ण नाम के आभास के फल से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है और तत्पश्चात प्रेम का कारण भक्ति प्रकाशित होती है। प्रेम के उदय होने पर स्वेद, कम, पुलक, गदगद, अश्रु धार आदि प्रेम के विकार उदित होते हैं और अनायास ही उसका संसार नष्ट हो जाता है तथा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है। एक कृष्ण नाम के इतने सारे फल भक्त प्राप्त करता है, किंतु ऐसा कृष्ण नाम यदि बार बार लेने पर भी ना तो प्रेम उदित होता है, ना नेत्र से अशुधारा ही प्रभावित होती है, तब इसका कारण प्रचुर अपराध है। यानी कि अशुधारा नहीं हो रहा है, कंपन नहीं हो रहा है, कोई भाव के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, इतने सालों से जप कर लिया, बस संख्या गिनते जा रहे हैं, संख्या गिनते गिनते हमारे मन के जो है, हमारा मन का जो है, माला के मन का जो है घिस गया है, माला भी हमने कई बदल ली है, कई माला गुम हो चुकी है, चोरी हो गई या गुमा दिया, मन के बदल दिए, मन के टूट गए, लेकिन आंखों से अशुधारा नहीं बह रही है, हृदय नहीं पिघल रहा है, रोमांचित नहीं हो रहे हम लोग, कृष्ण से विरह नहीं हो रहा है, माया से विरह हो रहा है, कृष्ण का नाम लेते हुए माया से विरह हो रहा है, और ऐसा होता ही जा रहा है, सालों साल बीता जा रहा है। इसका कारण केवल एक ही है, यहां विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं, वो है अपराध। अपराध से रहने से कृष्ण नाम बीज का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। इन वचनों से ये सहज ही जाना जा सकता है कि अपराध भक्ति के लिए कितनी भयंकर बाधा या अनर्थ है। देहात्म बुद्धि वशतः मनुष्यों के चित्त में जो अभिमान या भोग वासना उत्पन्न होती है, उससे दूसरों के धन संपत्ति का अपहरण, हिंसा, मिथ्याभाषण, मांस मछली आदि का भक्षण इत्यादि उत्पन्न होता है, वही पाप है। देह अनात्म अर्थात जड़ वस्तु है। इस देह के अनात्म अभिमान एवं अनात्म वस्तु भोग के लिए जो वासना होती है, उसे अनात्म वस्तु के संबंध में तन, मन और वचन के द्वारा जो सब असत कर्म होते हैं, वे पाप कहलाते हैं। इसलिए अनात्म वस्तु के साथ ही पाप का संबंध है। यानी कि पाप का संबंध हमारे जड़ शरीर से है, पाप का संबंध जड़ शरीर से है, अपराध का संबंध आत्मा से है, पाप का संबंध इस जड़ शरीर से है। ये जो जड़ शरीर प्राप्त हुआ है, ये हमारे पाप कर्मों का फल है, लेकिन अपराध का जो कनेक्शन है वो आत्मा से रिलेटेड होता है, क्योंकि अपराध का संबंध क्या है, हमारे भजन से है, और भजन जो है आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है, शरीर तो केवल एक साधन है। आप समझ इस बात को। इस देह के अनात्म अभिमान एवं अनात्म वस्तु के भोग के लिए जो वासना होती है, उसे अनात्म वस्तु के संबंध में तन, मन और वचन के द्वारा जो सब असत कर्म होते हैं, वह पाप कहलाते हैं। इसलिए अनात्म वस्तु के साथ ही पाप का संबंध है। ये आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाते, इनकी क्रिया अनात्म देह और मन ही मन आरोपित होती है। यानी कि जो भी फल प्राप्त होना होता है पाप कर्म का, वो शरीर को मिलता है, जड़ वस्तु को मिलता है। किंतु अपराध पाप की अपेक्षा अत्यंत गुरुतर या भीषण होती है। उसकी क्रिया साक्षात रूप से आत्मा को अनावृत करती है, आत्मा को ढकती है। भक्ति पद का अवलंबन कर कोई व्यक्ति जब श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, तब उनके श्रवण कीर्तन आदि आत्मा या चित वस्तु है, वह आत्मा के उद्देश्य से अनुष्ठित हुआ करते हैं। इसके विषय भगवान, भक्त, श्री नाम और श्री धाम आदि सब चित वस्तु हैं। इनके प्रति प्राकृत बुद्धि द्वारा अवज्ञा, अनादर आदि ये बुरे कर्म ही अपराध है। किनके प्रति? भगवान के प्रति, भक्त के प्रति, श्री नाम के प्रति, श्री धाम के प्रति। अगर हम प्राकृत बुद्धि रखते हैं या अवज्ञा की बुद्धि रखते हैं या अनादर की बुद्धि रखते हैं, ये जितने भी बुरे कर्म है ये सब अपराध में गिने जाते हैं। इसलिए बोलते हैं टू डिसरिगार्ड और डिसरोबे, डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर हु इज द रिवीलर ऑफ द होली धाम। धाम अपराध में पहला धाम अपराध ये बताया है नारायण भट्ट गोस्वामी ने, हरि ब्रज भक्ति विलास। तो इस ग्रंथ में धाम अपराध बताए, तो पहला धाम अपराध बताया है गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति अनादर की भावना, अवज्ञा की भावना जब होती है तो उस कर्म को अपराध माना जाता है, क्योंकि ऐसे कर्म से गुरु कृष्ण यानी कि भगवान हरि नाम ये प्रसन्न नहीं होते हैं और उनके असंतोष जनक अवस्था को वास्तव में अपराध कहा जाता है, इसलिए हमारे लिए अपराध लगता है। इसलिए अनात्म वस्तु संबंधित निंदनीय कर्म ही पाप है और आत्म वस्तु संबंधी निंदनीय कर्म अपराध है। यानी कि अपराध जो है आत्मा से संबंधित है, पाप जो है वो देह से संबंधित है। इसलिए पाप का फल अनात्म क्षण भंगुर देह को स्पर्श करता है और अपराध का फल आत्मा वसु ही अर्थात जीवात्मा को स्पर्श करता है। अपराध जीवात्मा के साधन भजन के लिए भीषण बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि अपराध उत अनर्थ का मतलब यह है कि भजन करना और कठिन हो जाएगा, संख्या पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, श्रवण करने में बाधा आएगी, सेवा करने में बाधा आएगी, मन नहीं लगेगा और सूखा सूखा सा लगेगा आध्यात्मिक जीवन, और तो और तृष्णाएं जागृत हो जाएंगी, भौतिक इच्छाएं जागृत हो जाएंगी, धन के प्रति या सांसारिक भोग विषय वस्तु के प्रति आकर्षण बढ़ने लगेगा। तो ये सब जो है अपराधों के कारण होता है। यहां तक कि विषय जातीय अपराध की अपेक्षा आश्रय जातीय या महत्पुरुषों के प्रति अपराध भक्ति को मूल से ही उखाड़ या सुखा देते हैं और भक्ति अंतरहित हो जाती है। तो दो कार्य होते हैं, जब ऐसा अपराध होता है महत्पुरुषों के प्रति अपराध होता है तो या तो भक्ति को सुखा देती है, ये भक्ति लता को सुखा देती है, या फिर जड़ से उखाड़ देती है। निर्भर करता है कि किस वैष्णव के प्रति अपराध किया है। उच्चतर वैष्णव होते हैं तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं अगर महाभागवत के चरणों में अपराध होता है तो महाभागवत तो अपराध नहीं लेते, अम्बरीश महाराज ने अपराध नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि दुर्वासा मुनि ने मेरे प्रति अपराध किया है। अम्बरीश महाराज तो खुद को अपराधी मान रहे थे, लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि उनकी जो चरण धूली है वो माफ नहीं करती है। महाभागवतों की जो चरण धूली है वो भी अपराकृत होती है और वो चरण धूली क्षमा नहीं करती है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर सुझाव दे रहे हैं कि साधक को चाहिए, ऐसे अपराधी को चाहिए कि उस वैष्णव की चरण धूली को अपने मस्तक पर लगाए और चरण धूली से क्षमा याचना करे, क्योंकि जहां जाओ वैष्णव चरण रखेंगे, ऐसे महत्पुरुष चरण रखेंगे, उनके धूली भी वहां पर पड़ेगी। और जब ऐसा अपराधी उस धूल के ऊपर चलेगा, उस चरण धूली के ऊपर चलेगा, तो वो चरण धूली जो है उसको कमल के सदृश नहीं होंगे, कमल के सदृश महसूस नहीं होंगे, बल्कि कांटों के समान लगेंगे, अंगारों के समान लगेंगे। जहां जहां वो कदम रखेगा और जहां जहां वो धूली होगी, वो धूली जो है अंगारों के समान लगेगी। इसलिए भजन के स्थान में रहते हुए भी, धाम में रहते हुए भी, मंदिर में रहते हुए भी, भक्तों के संग में रहते हुए भी आनंद समाप्त हो जाएगा, सूखा हो जाएगा आध्यात्मिक जीवन। तो यहां पर ये बता रहे हैं विषय जाति अपराध या शिव भगवान के प्रति अपराध भक्ति प्रवृत्ति को ठक देता है अथवा उससे संकुचित कर देता है, किंतु वह दूर होने पर भक्ति पुनः प्रकाशित होती है। किंतु भागवत अपराध की अपेक्षा भी वैश्य अपराध भीषण होता है, शास्त्रों के द्वारा ऐसा ज्ञात होता है। अपराध का मूल कारण ढूंढने पर यह ज्ञात होता है कि प्रीति के विपरीत द्वेष भावात्मक बुरे कार्य ही सभी अपराधों के मूल हैं। यह द्वेष अपराध मूलक होने के कारण प्रीति योग्य महापुरुषों एवं प्रीति के आश्रयभूत साधकों के मध्य एक ऐसी बाधा की सृष्टि करता है जिससे मनुष्य अधम होने पर भी अपने को उत्तम समझता है, मूर्ख होने पर भी अपने आप को महाबुद्धिमान समझता है और महत्पुरुषों के प्रति प्राकृत बुद्धि से अवज्ञा या अनादर किया करता है। तो अपराध करने वाला व्यक्ति है, उसकी जो है मनोवृत्ति बताई गई है यहाँ पर कि किस तरह से उसके अंदर भावनाएं किस प्रकार की होती है। अपराध जनक भावना रहती है, अनादर की भावना रहती है, यह अहंकार की भावना रहती है, स्वयं को बुद्धिमान या ज्ञानी मानने की भावना रहती है और अन्य भक्तों को निकृष्ट मानने की भावना रहती है। ये सब अपराध का लक्षण है और ये उत्पन्न होता है, यहां बता रहे हैं चक्रवर्तीपाद बता रहे हैं, द्वेष के कारण। वैष्णव अपराध के केवल दो कारण होते हैं, द्वेष और भय। ये मेरा आसन ना छीन ले, ये मेरा पद ना छीन ले, ये मेरे प्रचार के कार्य में आगे ना आ जाए, इसको हटा दो। तो नीतियां और कूटनीतियां या राजनीतियां जो अपनाते हैं द्वेष के कारण, वो अपराध बन जाता है। तो द्वेष जो है मूल कारण है, विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं। द्वेष बिल्कुल दया का उल्टा होता है, वैश्यों के हृदय में दया होती है लेकिन अपराधी के हृदय में द्वेष होता है। तो द्वेष छह प्रकार के वैश्य अपराध है जो हरि भक्ति सुदोदय में दिए गए हैं। पहला बताया है द्वेष, और फिर है क्रोध, क्रोधित होना, दुरासा मनी क्रोधित हुए, और शारीरिक रूप से प्रहार करना, यानी कि शारीरिक रूप से किसी को चोट पहुंचाना, जैसे उन्होंने राक्षस छोड़ा उनको मारने के लिए। क्रोध के बाद यही होता है कि फिर आक्रमण भी करते हैं। तीसरा स्टेप ये है ना भी नंदती, यानी कि वैष्णवों को देखकर प्रणाम ना करना। नो हर्षति, देखकर प्रसन्न ना होना कि कहां से आ गया सुबह सुबह ये, यानी देखकर मुंह मोड़ लेना, देखकर खुश ना होना, भक्त को देखकर प्रसन्न ना होना, हृदय में उल्लास ना होना भक्तों को देखकर, तो ये सब जो है वैष्णव अपराध में गिना जाता है। और वैष्णव को देखकर प्रणाम ना करना, वैष्णव को देखकर खुश ना होना, ये सब वैष्णव अपराध माना जाता है। और वैष्णव की निंदा करना, तो द्वेष करना, निंदा करना, क्रोधित होना, प्रहार करना, ये सब एक साथ मिले जुले हैं। भय और द्वेष ये एक दूसरे के भाई हैं, बड़ा कनिष्ठ संबंध है आपस में। जहां द्वेष होगा वहां भय भी होगा और वहां क्रोध भी आएगा, और वहां पे इस प्रकार संभव है कि एक दूसरे के प्रति हम लोग हिंसा की भावना भी रखें। हिंसा का मतलब ही है द्वेष। तो इसलिए यानी कि जिसके प्रति द्वेष की भावना है उसका गुणगान करना अति आवश्यक है, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। जिसके लिए हमने निंदा की अपनी वाणी से उनका गुणगान करना अति आवश्यक है। अनजाने और जाने में हम किसी की निंदा कर जाते हैं तो उसका निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या, ये है। होता क्या है कि कई साल बीतने के बाद जब हम भक्ति में लगे रहते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम प्रणाम नहीं करेंगे या खुश नहीं होंगे तो चलेगा, क्योंकि हम वरिष्ठ भक्त बन चुके हैं, अब दंडवत ना भी करें तो चलेगा। हाँ, ये बात सही कि व्यवहारिक रूप में कई बार नहीं संभव हुआ था कि सभी जगह दंडवत करते रहे, लेकिन जहां आवश्यक है अगर वहां भी नहीं किया जाए तो फिर ऐसी भावना से क्या होता है, धीरे धीरे फिर अपराध बढ़ने लगते हैं। हमें पता भी नहीं चल रहा है, पता भी नहीं चलता है ऐसे भक्त को कि वो अपराध कर रहा है, और अपराध का घड़ा फिर भरने लगता है। तो यहां पर इसका संकेत दे रहे हैं विश्वनाथ जी ठाकुर कि इस समय बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। शास्त्रों में महत कहने से श्री गुरुदेव, श्री वैष्णव और भगवत धाम आदि निर्गुण स्थान स्थित प्राणियों का बोध होता है। इनका शरीर अप्राकृत या निर्गुण होता है। इनके प्रति प्राकृति रखने से महत अवज्ञा रूप अपराध होता है। प्राकृत बुद्धि के द्वारा महत पुरुषों के प्रति सम्मान दान करने में भी वह अवज्ञा के रूप में ही परेवसित हो जाता है, और तथा स्वभाव से परम करुणा महापुरुषों के स्नेह, करुणा या कृपा से साधकों को वंचित कर देता है। तो यानी कि जब ऐसी भावना हो जाती है तो ऐसे वैष्णव से हम लोग करुणा की आशा नहीं रख सकते हैं, ऐसे वैष्णव से हम लोग कृपा की आशा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में अनादर की भावना जागृत हो गई है। जब अनादर की भावना जागृत हो जाती है तो आज नहीं जो है, जो द्वेष की भावना जो मन में छुपा हुआ है वो वाणी के रूप में प्रकट होगा। इस तरह से अपराध बढ़ता जाता है। अपराध सूक्ष्म होता है जब मन से होता है, अपराध जो है सूक्ष्मतर हो जाता है जब वाणी से करते हैं, अपराध सूक्ष्मतम हो जाता है जब शारीरिक रूप से किया जाता है। इसका उदाहरण कौन है, भृगु मुनि है। ब्रह्मा जी के प्रति अपराध किया उन्होंने मन से, शिव जी के प्रति अपराध किया वाणी से, और भगवान के प्रति अपराध किया चरणों से, अपने शरीर से। तो राध शब्द का अर्थ बता रहे हैं। राध शब्द अपराध में दो शब्द आते हैं, अप और राध। तो राध शब्द का अर्थ संतोष है। ये संतोष अवगत हुआ है अर्थात दूर हुआ है, जिस कारण से वही अपराध है। जिससे भगवान नाम, श्री गुरु और वैष्णव का संतोष अवगत होता है अर्थात दूर होता है, उसे अपराध कहते हैं। यानी कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी सेवा, कोई ऐसी भावना जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, हरि नाम प्रसन्न नहीं होता, श्री गुरु प्रसन्न नहीं होते, वैष्णव प्रसन्न नहीं होते हैं, वो अपराध में शामिल हो जाता है, वो अपराध में गिना जाता है। भक्ति, भक्त और भगवत कृपा जिस प्रकार भगवत प्राप्ति के मुख्य उपाय हैं, उसी प्रकार उनके संबंध में अवज्ञा, अश्रद्धा, अनादर, नित्य निंदा इत्यादि भगवत प्राप्ति के लिए प्रबल बाधक है। भक्तों के प्रति श्रद्धा कम होना ये बहुत खतरनाक अवस्था है। इसका मतलब क्या है कि आज नहीं तो कल अपराध शुरू होने वाला है। बहुत श्रद्धा थी पहले लेकिन अब श्रद्धा नहीं है। कारण क्या है इसका? तो इस प्रकार की भावना रखना। अवज्ञा, अवज्ञा करने से श्रद्धा कम होती है, आज्ञा का पालन करने से श्रद्धा बढ़ती है। कई बार पूछते हैं कि हमारी श्रद्धा नहीं है, गुरु में श्रद्धा नहीं है, वैष्णव में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा कैसे बढ़ाए? श्रद्धा नहीं भी है अगर आज्ञा का पालन किया जाएगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा में शक्ति होती है, वैष्णव की आज्ञा में शक्ति होती है। अगर भारी रूप से भी उस आज्ञा का पालन किया जाएगा तो क्रमशः देखेंगे कि जो साधक है उसके हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाएगी। ये प्रोसेस इतना कंप्लीट है, अपने आप में इतना परफेक्ट है। अगर श्रद्धा नहीं भी है तो, कहने का मतलब ये अश्रद्धा और अनादर जो है आपस में मिले जुले हैं। अवज्ञा, अश्रद्धा, अनादर, ये आपस में मिले जुले हैं। तो अवज्ञा जब होती है तो श्रद्धा टूटती है, श्रद्धा जब समाप्त हो जाती है तो फिर हम लोग क्या है, आदर की भावना भी समाप्त हो जाती है, अनादर करते हैं। और जब अनादर की भावना होती है तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे वैष्णवों की निंदा शुरू कर देते हैं। अवज्ञा, अश्रद्धा और उसके बाद अवज्ञा, अश्रद्धा और अनादर, तो ये प्रोसेस है पूरा। अगर हम लोग अपराध की कैटेगरी में आना चाहते हैं, अपराध के समाज में जुड़ना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस है जुड़ने का। अगर किसी के प्रति श्रद्धा कम करनी है तो सबसे पहला स्टेप है उसकी आज्ञा का पालन मत करो, ठीक है। गुरुकुल में यही सिखाया जा रहा था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने दिखा कि गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज ने फिर स्वयं सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन षंड अमर यही सिखा रहे थे, है ना, ऋषि मुनि ब्राह्मण वैष्णव है, इनकी अवज्ञा करो, इनका अनादर करो, उनके प्रति श्रद्धा ना रखो, पूर्ण श्रद्धा रखो हिरण्यकश्यपु में, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनको आदर दो, वही है भगवान आपके। तो वैष्णव अपराध करने से प्रहलाद महाराज के इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? वैष्णव अपराध करने से हम छोटे छोटे हिरण्यकश्यपु बनने लगते हैं। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए हमें कि वैष्णव समाज में या हमारी संस्था में, अंतर्राष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ में कोई भी खतरा नहीं है, हम पूर्ण तरह से सुरक्षित हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें पूरी रक्षा दी है, लेकिन एक एक भय है हमारे समाज में, हमारे इस वैष्णव समाज में, हमारी संस्था में केवल एक ही भय है, और वो भय क्या है, वो डर क्या है, वो खतरा क्या है, वो है वैष्णव अपराध। इससे हमें बचना होगा, ये बड़ा भयानक है। अनंत श्री ग्रंथकार कह रहे हैं, अपराध उत अनर्थ कहने से या नाम अपराध को ही ग्रहण करना चाहिए, सेवा अपराध को नहीं, क्योंकि विचार बुद्धि संपन्न सज्जन गण सेवा अपराध दूर करने वाले श्री हरि नाम और श्री हरि के स्तव स्तोत्र आदि पाठ और निरंतर भगवत सेवा के द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न सेवा अपराध दूर करने का विधान कर लेते हैं। देखिए, नाम अपराध अगर हो रहा है तो नाम अपराध से बचा जा सकता है, और अधिक नाम लेके, और सेवा अपराध से भी बचा जा सकता है हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, अधिक से अधिक हरि नाम लेके। लेकिन विश्वनाथ चक्र ठाकुर का कहना यह है कि अगर कोई ये भावना रखता है कि सेवा अपराध से मैं बच जाऊंगा हरि नाम लेने से, मैं बार बार हरि नाम लूंगा और इन सेवा अपराध से बच जाऊंगा, तो मुझे सेवा अपराध की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। 32 प्रकार के जो सेवा अपराध बताए हैं उसको इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो हरि नाम ले ही रहा हूं, उससे वो कटते होंगे, सेवा अपराध कट जाते हैं। अगर इस प्रकार की बुद्धि होती है तो ऐसा जो सेवा अपराध है वो नाम अपराध बन जाता है। जिस तरह से सातवां नाम अपराध है, नाम के बल पर पाप करना या नाम के बल पर अपराध करना, तो वो बड़ा भयानक हो जाता है। तो ऐसा सेवा अपराध जो है फिर नाम अपराध बन जाता है। और जब हम गुरु की अवज्ञा करते हैं, जो कि नाम अपराध भी बताया गया है, ऐसे नाम अपराध से क्या होता है, वो नाम अपराध फिर वैष्णव अपराध बन जाता है। साधु निंदा नाम अपराध है, लेकिन जब निंदा करते रहते हैं ऐसा नाम अपराध वैष्णव अपराध बन जाता है। गुरु की अवज्ञा करना नाम अपराध है, ऐसा करने से ऐसा नाम अपराध फिर वैश्य अपराध बन जाता है। यानी कि हम उसमें भी एडवांसमेंट करते हैं, सेवा अपराध से नाम अपराध में जाते हैं, नाम अपराध से वैश्य अपराध में जाते हैं, उस प्रकार हमारी उन्नति होती है। और अंततः क्या होता है, भक्ति लता बीज जो है, या भक्ति लता जो है हमारा चोकअप हो जाता है, जंगली पौधे उग जाते हैं, और जंगली पौधे जो है बहुत पावरफुल होते हैं। देखने में तो लगता है कि ये भक्ति है, लेकिन वास्तव में भक्ति होती नहीं है, क्योंकि ये साथ साथ जो है कई प्रकार के अनर्थ साथ में जागृत होते हैं। कूटी नाटी, जीव हिंसा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे हम लोग फिर भागने लगते हैं और उसी को ही भक्ति मानने लगते हैं। तो इस प्रकार इन अपराधों से हमें बचना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवत प्रेम के रास्ते में केवल एक ही बाधा है और वो है अपराध। लक्ष्य तक पहुंचना है, सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अगर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है तो एक ही तरीका है, क्या करना होगा, आपको ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना होगा, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य तक पहुंचना। इसी तरह से हम नियमों का पालन करते हैं, कहां तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य है हमारा कृष्ण प्रेम। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कई बार तो लक्ष्य के लोग इतनी चिंता करते हैं लेकिन नियमों को भूल जाते हैं, इसलिए वो लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार वैष्णव अपराध के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, ये अपने आप में अलग ही प्रसंग है, क्योंकि तो आज हम सुन रहे हैं यहां पर भागवत में कि महाराज रघुगण को ये पश्चाताप हो रहा है, तो पहले क्या होना चाहिए। विश्वनाथ जी ठाकुर भी यही सुझाव दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर वैष्णव अपराध होता है तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप करने के बाद, पश्चाताप सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दंडवत तो कोई भी कर सकता है, क्षमा याचना तो कोई भी कर सकता है, ये तो हमने अब चलचित्रों में और मूवीज में भी देखा है क्षमा मांगते हुए, लेकिन हृदय के अंदर अंतःकरण में जो पश्चाताप की जो भावना है वो तो उन साधकों में होती है जो वास्तव में अपराध से बचना चाहते हैं। तो पश्चाताप हृदय से होना चाहिए, और पश्चाताप होने से आधा अपराध तो वहीं समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा बताया गया उस वैष्णव के पास जाना, वैष्णव के पास जाकर उसके चरणों में गिरना, उसकी चरण धूलि अपने मस्तक पे लगाना और क्षमा याचना करना, दंडवत करके, दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करना, और फिर उनसे पूछना कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अगर वो वैष्णव सेवा देते हैं और ऐसी सेवा करने से फिर क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। जगाए मजाए ने कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था, चेतन चरता में चेतन भागवत में लिखा है, उन्हें सारे पाप किए, जितने पापों का यहां वर्णन किया गया वो सारे पाप जगाए मधाई ने किए, लेकिन उन्होंने एक वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कृपा हुई नित्यानंद प्रभु की, नहीं तो नित्यानंद प्रभु ही उनके ऊपर कृपा ना करते, क्योंकि वो वैष्णव अपराध नहीं किए और इस कारण से जगाए मधाई के ऊपर कृपा हो गई। लेकिन जगाए मधाई को इतना पश्चाताप हो रहा था, इतना पश्चाताप हो रहा था कि फिर नित्यानंद प्रभु ने सुझाव दिया कि आप ऐसा करो कि आप गंगा जी के तट पर जाओ, वहां घाट बनाओ, और वहां कंकड़ पत्थर होते हैं घाट में, वैष्णव लोग वहां स्नान करने आते हैं, वो रास्ते को साफ रखो, इस तरह से वैष्णव सेवा भी होगी, गंगा जी की भी सेवा होगी और आपका मन लगेगा फिर भजन में। तो इस तरह से जगाए मधाई जो है घाट पर जाकर उन्होंने सेवा शुरू की। तो कहने का अर्थ ये है, चेतने महाप्रभु यहां तक दिखा दिया कि उनका शरीर काला पड़ गया है, और देखो मैंने आपके सारे पाप ले लिए मैंने, अब देखो, लेकिन फिर भी जगाए मधाई जो है उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि नहीं महाप्रभु, हमें तो नहीं लग रहा कि हमारा अपराध दूर हुआ है, हमने इतने पाप किए हैं, हमें पापों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तब नित्यानंद प्रभु ने सुझाव दिया, जाओ घाट पर जाओ, वहां वैष्णव की सेवा करो। तो इस प्रकार से जब हम सेवा की भावना रखते हैं और उससे वैष्णव की सेवा कर देते हैं तो फिर हमारा फिर रिकॉर्ड क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार से कई उदाहरण है, चैतन्य चरितामृत में गोपाल चप्पल की कथा है, जिसने शिवास पंडित के घर के बाहर काली पूजा की सामग्री रख दी शिवास पंडित को बदनाम करने के लिए, देखा द्वेष के कारण। तो द्वेष और भय क्या था उस ब्राह्मण को, गोपाल चप्पल को क्या भय था कि हम ब्राह्मणों को कौन पूछेगा, सब शिवास पंडित की जय जय कर रहे हैं, यहां पर महाप्रभु स्वयं आते हैं, नित्यानंद प्रभु आते हैं और प्रत्येक दिन रात्रि को यहां संकीर्तन होता है, हम ब्राह्मणों के पास कौन आएगा। तो ये भय हो गया कि ये शिवास पंडित जो है हमारे पद को छीन लेगा, तो इसको बदनाम करो। तो जब भय उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं हम लोग, फिर उसको बदनाम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। हम निंदा क्यों करते हैं, निंदा इसलिए करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम श्रेष्ठ। निंदा करने का कारण ये होता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। हम निंदा करेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है उसे विश्वास हो जाएगा कि आप श्रेष्ठ हो, लेकिन वास्तव में अगर वो समझदार होगा वो भक्त, वो समझ जाएगा कि ये निंदा कर रहा है, मुझे इस निंदा से बचना चाहिए, निंदा सुनने से भी बचना चाहिए। निंदा सुनना भी जो है वो अपराध में गिना जाता है, निंदा सुनने से आध्यात्मिक सुकृति समाप्त हो जाती है। इसे सुझाव दिया गया है कि वैष्णव निंदा जहां होती है उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। या फिर शास्त्रार्थ करके उसको हराना चाहिए या बहुत अधिक हो, यह सुझाव तो नहीं दिया जाता है, लेकिन समझने के लिए कि कितना भयानक है ये अपराध, अगर ये नहीं कर सकते तो अच्छा है कि शरीर को छोड़ दो। तो इस प्रकार जो है गोपाल चप्पल ने सामग्री रखी काली पूजा की सामग्री ऋषिवास पंडित को बदनाम करने के लिए, लेकिन गोपाल चप्पल को 3 दिन के भीतर क्या हुआ, कोढ़ का रोग हो गया। कलयुग में कोढ़ का रोग तो नहीं होता है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, किसी वैश्य अपराध करते हैं तो हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि प्रभु जी हमने तो देखा है इनको तो कोढ़ का रोग हो नहीं रहा है, तो कोढ़ का रोग शायद इसलिए भी नहीं होता होगा आज के समय में कि लोग ये देखकर कि वैष्णव लोग अपराध कर रहे हैं और कोढ़ का रोग हो गया है तो फिर कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई आंदोलन में जुड़ेगा नहीं कोढ़ के रोगियों को देखकर। इसलिए कली काल में अपराध करते हैं तो पहला रोग क्या होता है, मन का रोग होता है, मन से पहले ही रोगी है और अधिक रोगी हो जाते हैं, मन हमारा पूरा रुग्ण हो जाता है। तो गोपाल चप्पल को कोढ़ का रोग हो गया। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु आए हुए थे कुलिया ग्राम संन्यास लेने के उपरांत, तो वहां पर उन्होंने अपराध की क्षमा मांगी चैतन्य महाप्रभु से, शिवास पंडित से। चैतन्य महाप्रभु का जाओ शिवास पंडित के पास जाओ, उनके चरणों में अपराध किया है, उनसे क्षमा याचना करो। इसी तरह से गोपाल चक्रवर्ती थे, उन्होंने हरिदास ठाकुर के चरणों में अपराध किया, बलराम आचार्य के घर में सभा बुलाई गई थी और हरिदास ठाकुर ने जब कहा कि हरिनाम तो कृष्ण प्रेम देने वाला है, क्योंकि अन्य ब्राह्मणों ने कहा कि हरिनाम तो स्वर्लोक की प्राप्ति कराएगा, हरिनाम तो मुक्ति दिलाएगा, लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये सब गलत बोल रहे हैं, ये हरिनाम तो कृष्ण प्रेम देने वाला है। तो गोपाल चक्रवर्ती सभा में खड़े हो गए, उन्होंने कहा अगर ये बात गलत निकली तो क्या होगा, नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप चिंता ना करें, अगर ये बात गलत निकली तो स्वयं अपनी नाक में खुद काट लूंगा। लेकिन हुआ क्या कि 3 दिन के उपरांत जो है गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ का रोग हो गया, नाक उनकी नाक पिघलने लगी। उन्होंने भी क्षमा याचना की उसी स्थान में कुलिया ग्राम अपराध भंजन कुलिया, तो उन्होंने भी आके वहां क्षमा मांगी। इसी तरह से देवानंद पंडित भी कथा कर रहे थे, भागवत कथा कर रहे थे, भक्ति का तात्पर्य नहीं दे रहे थे और अपना ही तात्पर्य थे, ज्ञान मार्ग का तात्पर्य दे रहे थे भागवत के माध्यम से। शिवास पंडित ने भागवत का श्लोक सुना, देवानंद पंडित के आश्रम में आए, उनके जो शिष्य थे वो शिवास पंडित के भाववेश को, उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, शिवास पंडित को उठा के बाहर कर दिया। देवानंद पंडित जो है व्यास गद्दी में बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप देखते रहे, अपराध देवानंद पंडित को लग गया। बाद में चैतन्य महाप्रभु उस मार्ग से गुजर रहे थे, ये उनके आने से पहले की लीला है, महाप्रभु के आने से पहले की लीला है, घटना है। तो शिवा जब चैतन्य महाप्रभु आए तो देवानंद पंडित को बहुत डांटा, उन्होंने कहा तुम्हारी जो कथा है, जो तुम कथा करते हो, कौए की तरह है, बिल्कुल शुष्क है, सूखा है, ये भागवत का असली तात्पर्य नहीं जो तुम सुना रहे हो, तुम खुद भी भ्रमित हो और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हो। लेकिन देवानंद पंडित फिर भी नहीं समझे। फिर एक बार वक्रेश्वर पंडित जो है देवानंद पंडित के घर पे आके रुके थे और देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की बहुत सेवा की, उनका हृदय में जो प्रेम था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, उनके भाव को देखकर, उनके प्रेम को देखकर देवानंद पंडित का हृदय पिघलने लगा। और वक्रेश्वर पंडित जो नृत्य करते भाव के कारण, तो बहुत भीड़ एकत्रित होती तो देवानंद पंडित उनकी रक्षा करते और डंडे से जो है लोगों को दूर करते, और इस तरह से वक्रेश्वर पंडित जो है वो महाप्रभु के लिए नृत्य करते, इस तरह से उनका हृदय पिघलने लगा। तो उन्होंने भी बाद में जाके चैतन्य महाप्रभु से क्षमा याचना मांगी, इस तरह से वो भी अपराध से मुक्त हुए। तो कहने का अर्थ यह है कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत, इनमें अनेकों उदाहरण है जिससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, उसमें ब्रह्मा जी आए, बड़े बड़े देवी देवता आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, ब्राह्मण आए, वहां पर यज्ञ किया जा रहा था, और लेकिन शिव जी उस समय ध्यान लगाए बैठे थे, महादेव ध्यान लगाए बैठे थे और सब लोग यज्ञ में आहुति डाल रहे थे, ब्रह्मा जी आहुति डाल रहे थे यज्ञ में, आहुति डाल रहे थे इंद्र चंद्र सूर्य सब यज्ञ में आहुति डाल रहे थे, लेकिन शिव जी जो है ध्यान में लगाए बैठे हुए थे। प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ऐसी निंदा की, ऐसा अपमान किया, शिव जी का ऐसा अपमान किया कि हम लोग बोल भी नहीं सकते, श्रीमद् भागवत में है ये। बहुत ही घोर अपराध उन्होंने किया, और शिवजी जो है चुपचाप वहां से उठ खड़े हुए, वहां से चले गए। और नंदी वहां पर जो बैठी हुई थी, जो शिवजी की वाहन है, वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने भी बदले में शाप दे दिया प्रजापति दक्ष को, हाँ, कि तुम तो इतने कामुक हो और तुमने इतना घोर अपराध किया है, तुम्हें बकरी का मुंह मिलेगा। तो इतना घोर शाप दिया फिर, और उसके बाद शिवजी वापस चले गए। और फिर से एक बार दोबारा जब यज्ञ हुआ, तो सती जो कि शिवजी की पत्नी थी, उनकी इच्छा हुई कि वो अपने पिता के उस समय जाए, यज्ञ में भाग लेने के लिए जाए, लेकिन शिवजी ने मना किया कि जहां पे अतिथि क्रोधित हो, अनादर का भाव हो, उस स्थान में हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी सती वहां पर गई और उनको सारे अपशब्द सुनने पड़े, यानी कि अपशब्द यानी कि जो प्रजापति दक्ष जो है सती को देखकर प्रसन्न नहीं हुए, और वही उनके अंदर भावना थी, अनादर की भावना थी शिवजी के प्रति। उस भावना को समझ गई सती और अपने पति यानी महादेव के प्रति अपराध की इस भावना को देखकर सती जी ने उसी समय शरीर त्याग दिया। और सती जी ने जब शरीर त्याग दिया, जब शिवजी को पता चला, तब शिवजी बड़े क्रोधित हुए। तब उन्होंने जो है एक राक्षस प्रकट किया, वीरभद्र, और वीरभद्र ने फिर आक्रमण किया यज्ञशाला में, सारे यज्ञशाला को ध्वस्त कर दिया। और बाद में फिर बकरी का जो है सिर दिया गया, किसको? प्रजापति दक्ष को, क्योंकि गला उड़ा के फेंक दिया वीरभद्र ने। भयानक युद्ध हुआ वहां पर। तो शिवजी बिल्कुल भी जो है विचलित नहीं हुए, वो चुपचाप उस सभा से उठ के चले गए कि शिवजी ने अपने प्रति कोई अपराध नहीं लिया। इसी तरह से वैष्णव अपने प्रति कोई अपराध नहीं लेते, लेकिन किसी अन्य भक्त का अपराध होता है या भगवान का कोई अपराध करता है, तो ऐसे वैष्णव जो है क्या हो जाते हैं, वो फिर आग के समान हो जाते हैं। चांद काजी ने आके भक्तों को पीटा, मृदंग तोड़ा शिवास पंडित के घर में, तो चेतने महापुरुष कितने क्रोधित हुए, उन्हें लाखों लोगों को इकट्ठा किया, मशाले लेकर जो है चांद काजी के घर में पहुंच गए। तो इस तरह से हम लोग इन कथाओं के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं कि वैष्णव अपराध कितना भयानक है, और हम सबको इस वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, और दूसरों को वैष्णव मानकर, अन्यों को वैष्णव मानकर, खुद को वैष्णव न मानकर आदर की भावना रखनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम लोग वैष्णव समाज में सुखी रह पाएंगे। क्योंकि कई बार हमें प्रचार में सफलता मिलती है, यश मिलता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलती है, तो फिर हम वैष्णव का आदर देना भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं। सामान्य भौतिक जगत में ऐसे ही होता है, कोई व्यक्ति धनी होता है, समाज में उसको पद मिलता है ऊंचा, तो फिर वो अपने रिश्तेदारों को या मित्रों को, जो पुराने मित्र रिश्तेदार हैं, उनको भूल जाता है। हालांकि रिश्तेदार तो पीछे भागते हैं, लेकिन वो फिर उनको धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। ये स्वाभाविक है, सामान्य जगत में होता है। और यही जो है विचार हम लोग कई बार वैष्णव समाज में ले आते हैं, और जब हमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलने लगती है, हम भूल जाते हैं कि हम भक्तों के बीच में रह रहे हैं, वैष्णव के बीच में रह रहे हैं, जो कि आग के समान है। आग के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, बताया गया है। अर्चे वगैरह के बहुत करीब जाते हैं, या अग्नि के करीब बहुत करीब जाते हैं, तो फिर खतरे का डर है, खतरा रहता है, जलने का डर रहता है। अर्चे वगैरह के बहुत निकट जाते हैं, कुछ समय के बाद देखते हैं अर्चे वगैरह के साथ इतना ज्यादा मेल जोल हो जाता है, फिर अर्चे वगैरह समझते हैं कि ये तो घर के ही हमारे कोई है, एक और व्यक्ति है, इनके सामने बातें करें, निंदा करें, सब चलेगा। तो सेवा अपराध हो रहा है, यह भी पता ही नहीं चलता है। फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार अग्नि के सामने, अर्चे वगैरह के सामने, गुरु के सामने, या गुरु के बहुत करीब अगर जाते हैं, तो ये खतरा रहता है। तो ये खतरे से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, और इस प्रकार प्रीति लक्षण रखते हुए, एक दूसरे की प्रशंसा की भावना रखते हुए, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का आदर देते हुए, हम सबको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। हम सबको एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है, हम सबको एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम लोग भक्ति भजन के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अकेले हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, ना ही अकेले कोई धाम जाने वाला अकेले भक्ति करके, तो एक दूसरे को सहारा देना होगा और एक दूसरे का सहारा लेकर एक दूसरे की रक्षा करके। और कोई अगर भक्त अपराध कर रहा है और वो नहीं मानता है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास को, किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाए जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है। कई बार होता है ऐसा कि हम बहुत समझाते हैं उस भक्त को, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। ये दूसरा उपाय ये है कि उस भक्त की श्रद्धा किसी अन्य भक्त में है तो उस भक्त को कहा जा सकता है कि आप उसको समझाइए क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो इस तरह से भी कई बार परिस्थिति आती है। तो फिर और दूसरा तरीका ये है कि कोई वरिष्ठ वैष्णव हो तो उनके पास कुछ भक्त जा सकते हैं, 8-10 भक्त जा सकते हैं, और नम्रता से प्रार्थना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा विचार है कि आप इस प्रकार से बोलते हैं तो भक्तों को ठीक नहीं लगता है। तो अगर वो वैष्णव थोड़े से भी अगर सरल स्वभाव के होंगे और सुनने के लिए तैयार होंगे तो समझ जाएंगे कि ये मेरा ऐसा कहने से, सभा में, समाज में इस प्रकार से बोलने से वैष्णव लोग जो है खुश नहीं है, तो इस प्रकार से वो वैष्णव भी समझ आते हैं। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि अपराध बड़ा भयानक है और हमें बचे रहना है। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि भाव की अवस्था तक जो है 95% ही अपराध के द्वारा जो उत्पन्न अनर्थ है वो समाप्त होते हैं। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम लोग धाम ना चले जाए तब तक अपराध का खतरा बना रहता है। साधारणतः भाव की अवस्था में कोई अपराध नहीं करता है लेकिन संभावना बनी रह सकती है, इसलिए हम सबको बचने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप कथा में बैठे हैं और आप कथा के दौरान आपको शौच क्रिया का समय आ जाता है, यानी कि प्रेशर लगता है आपको, आप कथा में बैठे हैं तो क्या करेंगे? आप बैठे रहेंगे या जाएंगे उठ के? ऐसी है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा ही करना चाहिए। अवसर है, बहुत सरल उपाय है। ऐसी अवस्था में बहुत वैराग आता है। भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं त्यागा शांति रुच्छति, त्यागने से शांति की प्राप्ति होती है। तो वो स्थान को त्यागना होगा, कोई ना कोई बहाना बनाकर, ये न तेन प्रकार, किसी ना किसी प्रकार से उस स्थान को त्यागी, झूठ बोलना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, वो त्यागी उस स्थान को। झूठ बोलना सही है, अच्छा है वो निंदा सुनने से, लेकिन उस स्थान को त्यागी। अगर आप कमजोर हैं, आपसे सच नहीं बोला जा रहा है तो वहां से झूठ बोल के निकलिए, लेकिन निकलिए जरूर वहां से, समझौता मत करिए, लेकिन सुनने की आदत डाल ली, फिर तो वो अपराध निश्चित रूप से बना रहेगा। वो अपराध लगेगा, हमें भी लगेगा, क्योंकि हम लोग उस अपराध में शामिल हो गए। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन रहने का मतलब यह है कि आपने स्वीकार कर लिया जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वो सही है। नहीं, इन सब महाजनों ने अपराध नहीं किए, सब भागवत में जो प्रसंग है, शिक्षाप्रद कथाएं हैं, इससे हम लोग सीखे हैं कि हम ऐसा ना करें। नहीं, ये तो कथा है। देखिए, कथा के पीछे आपकी भावना सही होनी चाहिए। यहाँ प्रजापति दक्ष की निंदा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम महाराज रघुवंश की निंदा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम गोपाल चप्पल की निंदा नहीं कर रहे हैं, यहाँ गोपाल चक्रवर्ती की निंदा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो इस कथा को बताया जा रहा है ताकि हम कुछ सीख सके। भावना हमारी सही है कि नहीं? आपकी भावना सही है अंदर से, तो क्योंकि अपराध के पीछे भावना जो होती है वो द्वेष की भावना होती है, तो हमारा कोई द्वेष नहीं है प्रजापति दक्ष, हमें क्यों द्वेष करना उसे? क्योंकि बाकी बाद में गोपाल चपल, गोपाल चक्रवर्ती, ये सब के सब तो वैष्णव बन गए ना, जगाए मधाई भी वैष्णव बन गए, हालांकि उन्होंने तो कोई अपराध भी नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ पाप ही किया था, ये सभी वैष्णव बन गए। जगाई मधाई की समाधि भी है ना, ये सारे वैष्णव बन गए। तो ये कथा केवल समझने के लिए है। दुर्वासा मुनि भी तो वैष्णव बन गए क्योंकि अम्बरीश महाराज से उन्होंने क्षमा मांगी। तो अपराध की क्षमा मान लेता है, उसके बाद ये बात भी जरूरी है कि उसके अपराध को बार बार गिना जाए, और ये वही अपराधी है जिसने अपराध किया था, ये वही व्यक्ति है, अगर ऐसा भी करेंगे तो हमें अपराध लगेगा, क्योंकि वो क्षमा मांग चुका है, वो सेवा कर रहा है, और जिसके प्रति अपराध हुआ है उसके हृदय में भी कोई दुर्भावना नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप समझ इस बात को, यानी किसी के अपराध के बारे में चर्चा करना है, उसने इतना अपराध किया था, उसने अपराध किया था, या उसने इतना पाप किया था, ये पहले बहुत सिगरेट पीता था, ये बहुत पहले ड्रिंक करता था, ये क्या जब कर रहा है, तो ये सब जो है फिर अपराध, हमें अपराध लग जाएगा, फिर उस बात का हमें ध्यान रखना, ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।